बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे काबुल वाशिंगटन सिक्योरिटी मुआहदे के तनाजुर में। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में जुमेरात से एतवार तक लोया दरगाह इजलास में बहस व मुबाहसे के बाद काबुल वाशिंगटन सिक्योरिटी मुआहदे को मंजूरी दे दी गई और सदर हामिद करज़ई को मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त दे दी गई और उनसे कहा गया कि एक महीने के अंदर इस मुआहदे पर दस्तखत कर दें। सदर हामिद करज़ई ने लोया दरगाह के इजलास से मंजूरी के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत के लिए उन्होंने कहा है कि सदारती इलेक्शन के बाद इस पर दस्तखत किए जाएंगे। लोया दरगाह इजलास ने मुआहदे को ऐसी हालत में मंजूरी दी है कि अफगान अवाम इजलास के दौरान मुसलसल मुजाहरे करके मुआहदे की मुखालफत का ऐलान करते रहे और मुआहदे की मंजूरी के बाद भी काबुल और अफगानिस्तान के दीगर शहरों में अवाम ने मुआहदे की मुखालफत का मुसलसल ऐलान किया है और इस मुआहदे को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी इकतदार आला के ख़िलाफ़ करार दिया है। दूसरी जानिब लोया दरगाह इजलास से मंजूरी के बाद अफगान सदर हामिद करज़ई ने ऐलान किया है कि मुआहदे पर 2014 के सदारती इलेक्शन के बाद दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने इसी के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए बाज़ शराइत भी पेश की हैं। अमरीका का मुतालबा है कि मुआहदे पर फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए जाएँ। इसी के साथ बाज़ अफगान रहनुमाओं ने भी सदर हामिद करज़ई से मुतालबा किया है कि बिला ताखीर मुआहदे पर दस्तखत कर दें। हामिद करज़ई ने लोया दरगाह इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुआहदे की मंजूरी की दरख्वास्त की थी लेकिन मुआहदे की मंजूरी के बाद इस पर दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं। इसका जायज़ा हम जुमेरात के प्रोग्राम में लेंगे। इसके अलावा जो अफगान रहनुमा सदर करज़ई से मुआहदे पर फौरी तौर पर दस्तखत का मुतालबा कर रहे हैं उनके दलाइल क्या हैं और वो क्यों इस मुआहदे पर बिला ताखीर फौरी तौर पर दस्तखत चाहते हैं, इस मौजू पर भी हम जुमेरात के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम मुआहदे के मतन के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ये मुआहदा है क्या, अफगान अवाम की जानिब से इसकी मुखालफत की वजूहात क्या हैं। जब अवाम इस मुआहदे की मुखालफत कर रहे हैं और इसको अपनी खुद मुख्तारी और कौमी इकतदार आला के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं तो लोया दरगाह ने इसकी मंजूरी क्यों दी और लोया दरगाह की कानूनी हैसियत पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि लोया दरगाह की मंजूरी काफ़ी है या पार्लियामेंट से भी मंजूरी ज़रूरी है। पहले इस हवाले से हमारी रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएं और इसके बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तज़िया हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
अफगानिस्तान और अमेरिका का सिक्योरिटी मुआहदा दोनों मुल्कों के माबैन बहस और तकरार का मौजू बन गया है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने इस मुआहदे पर सख्त मौकफ इख्तियार करते हुए कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत सन 2014 के सदारती इलेक्शन के बाद नए सदर के हाथों होंगे, जबकि अमेरिका का दबाव है कि अफगान सदर फौरी तौर पर इस मुआहदे पर दस्तखत कर दें। सिक्योरिटी मुआहदे को लोया जिरगा से मंजूरी मिल गई है और लोया जिरगा के इजलास से खिताब में सदर हामिद करज़ई ने खुद भी इस बात पर जोर दिया था कि कबायली अमायदीन और अहम सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल ये इज्तिमा सिक्योरिटी मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दे दे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के सदर के सख्त मौकफ को देखते हुए अमरीका की कौमी सलामती की मुशीर सूजन राइस अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंची हैं। हालांकि उन्होंने इस सफर का मकसद अमरीकी फौजियों से मुलाकात करना बताया है और इस 3 रोजा दौरे का आखिरी प्रोग्राम अफगान सदर से मुलाकात थी, लेकिन तजिया निगारों का कहना है कि कौमी सलामती की मुशीर के दौरे अफगानिस्तान का अहम मकसद सिक्योरिटी मुआहदे के सिलसिले में पैदा होने वाला तातुल ही है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने सूजन राइस से मुलाकात में भी अपने मौकफ में कोई नरमी लाने से इनकार कर दिया है। یہی نہیں انہوں نے معاہدے کی پیش کی شرطوں میں کچھ اضافہ بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لویا جرگہ نے اپنی سفارشات میں گوانتانامو جیل میں بند افغان شہریوں کی رہائی کی بات کہی ہے اور یہ مطالبہ پورا کیا جانا چاہیے۔ گوانتانامو جیل میں اس وقت 20 افغان قیدی موجود ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ افغانستان کی امن و سلامتی کی ضمانت دے، افغان فورسز کی ٹریننگ کی ذمہ داری پوری کرے اور امریکی فورسز افغان گھروں میں ہرگز داخل نہ ہوں۔ امریکی صدر براک اوباما نے ایک خط ارسال کر کے افغانستان کے صدر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکی فوجی غیر معمولی صورتحال کے علاوہ افغانیوں کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تاہم ابھی گوانتانامو سے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں امریکہ کی جانب سے کوئی جواب دیے جانے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ افغان صدر اس بات پر مصر ہے کہ یہ شرطیں پوری ہو جانے کی صورت میں بھی معاہدے پر دستخط وہ خود نہیں کریں گے، بلکہ انتخابات میں فتح حاصل کرنے والے نئے صدر کو یہ ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بے شک افغانستان کے صدر نے افغانستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کی منظوری کے لیے لویا جرگہ پر زور دیا تھا، لیکن انہیں اس حقیقت کا اچھی طرح سے علم ہے کہ سیکیورٹی معاہدے پر عوام کی جانب سے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں امریکی حکام پر بھروسہ نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی امن و سلامتی کی صورتحال خراب رہی تو بہت افسوسناک ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں افغان حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ عمل پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں رہے اور امریکہ اس سلسلے میں کابل حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ حامد کرزئی یہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالے تاکہ پاکستان کی حکومت طالبان کو پریشر ٹول کے طور پر استعمال نہ کر پائے۔ اگر تجزیہ نگاروں کا یہ خیال درست ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ ان تمام شرطوں کو پورا کرے گا۔
جی ہاں ناظرین، کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ افغان صدر حامد کرزئی فوری طور پر اس معاہدے پر دستخط کر دیں، اور امریکہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر معاہدے پر دستخط نہ کیے گئے تو ممکن ہے کہ امریکہ افغانستان کی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر کیے بغیر اپنی تمام افواج کو فوری طور پر واپس بلا لے۔ افغان صدر حامد کرزئی پر بھی اندرونی طور پر بھی اس حوالے سے دباؤ ہے، بعض افغان رہنماؤں کا اصرار ہے کہ انہیں اس معاہدے پر فوری طور پر دستخط کر دینے چاہیے، لیکن حامد کرزئی نے کچھ شرائط پیش کی ہیں اور ان کا اصرار یہ ہے کہ 2014 کے صدارتی الیکشن کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کل کے پروگرام میں، یعنی جمعرات کے پروگرام میں، کہ حامد کرزئی کیوں اس میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں اور ان پر اصرار جلد معاہدے پر دستخط کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم معاہدے کی ماہیت پر گفتگو کریں گے اور یہ کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد افغانستان کی حیثیت کیا رہے گی اور افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کتنی محفوظ رہے گی، کتنی مجروح ہوگی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے نئی دہلی میں دعوت دی گئی ہے ہندوستان کے ممتاز سیاستداں اور سینئر تجزیہ نگار شمیم فیضی کو، لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار علی جعفر زیدی، اور اسی کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کی بحث میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر کالم نویس اور ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر صاحب کو۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ معاہدے کو افغان لویا جرگہ اجلاس نے منظوری دے دی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین لویا جرگہ سے ہی واقف نہ ہوں کہ یہ ہے کیا چیز، افغانستان میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ آپ بتائیں گے اس سلسلے میں کچھ؟
جی، یہ لویا جرگہ ان کا کلچرلی بہت پرانا ایک ایسا نظام ہے جس میں تمام فیصلے جو قبائلی سردار ہیں وہ مل کر فیصلہ بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ایشوز کو اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ ان کا بہت پرانا ایک طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا، اور یہ وہی نہیں، ایک وقت میں عرب ممالک میں بھی، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے بھی۔ تو یہ وہ قبائلی یعنی ٹرائبل سوسائٹیز جہاں جہاں بھی تھیں और अभी तक हैं, तो वो अपने फैसले जो ट्राइबल हेड हैं वो आपस में मिल बैठ कर करते हैं। अब इस जरगे में, ये अफ़गानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के जो नॉर्थ डब्ल्यू यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो इलाके हैं, फाटा वगैरह ऊपर, वहाँ भी यही निज़ाम जारी है अरसे से। तो इस जरगे में कोई 2,500 के करीब जो कबायली सरदार और जो अहम पॉलिटिकल फिगर्स थीं, उन्होंने इस में शमूलियत की और उन्होंने ये फैसला किया कि अमेरिका के साथ जो बाइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उस पर काबुल हुकूमत साइन कर दे। बल्कि उसमें से ये भी उन्होंने वक्त का तायुन भी किया कि इस साल में ही कर दिया जाए। उसके अलावा और बेशुमार उसमें कोई 31 उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं, जिसमें बुनियादी जो बात है वो मुआहदे पर दस्तखत करने की है, लेकिन उसके साथ साथ गुएंटानामो बे के जो कैदी हैं उनकी रिहाई भी उसमें मुतालबा शामिल है। और उसके अलावा जो अहम तीसरी बात है वो ये कि जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो अफ़गान घरों में दाखिल ना हों और उनको उनके पास ये जो दाखिल होकर पकड़ लेते हैं, गोलियां चलाते हैं, मारते हैं लोगों को, ये सब ना हो। और उसमें ये भी है कि अगर ये सब कुछ वो करेंगे तो फिर अगर किसी का कत्ल करते हैं तो जो अफ़गानिस्तान का कानून है उसके तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए, जिस पर अमेरिकी हुकूमत जो है वो बहुत नाखुश है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहती। बल्कि ये जो मीटिंग हुई उसमें जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान में कनिंगम, उन्होंने जब करज़ई ने कहा कि गुएंटानामो बे से जो रिहाई है 30 कैदियों की वो भी उतनी ही अहम है जितना कि सिग्नेचर्स और लुई जरगा का ये फैसला है, तो वो बरहम हुए। उन्होंने कहा कि वो जो कैदी हैं वो तो वहाँ पर अमेरिकी कानून के तहत उनको उन पर मुकदमा चल रहा है और जो भी केस है यानी अमेरिकी कानून वहाँ नाफिज है। तो उसके जवाब में ये करज़ई काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पर जो कानून है हमारे मुल्क का वो भी तो अमेरिका पे की फौजियों पर नाफिज होना चाहिए। दूसरा ये कि लुई जरगा ने जो गुएंटानामो बे के कैदी हैं उनकी रिहाई और दस्तखत को मुंसलिक किया है
जी।
तो ये काफ़ी अहम नुकात हैं जो कि इस माहदे में हैं और अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द उस पे साइन हो जाएं। बल्कि जो आई हैं सूजन राइस
जी,
जो नई ओबामा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने आकर गालबन एक तरह का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने ये सिग्नेचर इस साल के इख्तिताम से पहले न किए तो आपकी जो फौजी इमदाद है वो भी ख़तरे में जा सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, $4 बिलियन। और उसके साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी है कि हम अपनी तमाम फौजें और मगरिब की फौजें और नेटो की फौजें 2014 में तमाम हम निकाल के ले जाएंगे। फौजों के निकालने का मतलब ये है कि आपको ना मगरिब की कोई इमदाद मिलेगी और ना ही ये $4 बिलियन मिलेंगे। तो ये काफ़ी अभी माहदा जो है ये लेतोलाल का शिकार है और हामिद करज़ई चाहते हैं कि जो नए इलेक्शन अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं इनके 2014 अप्रैल में, तो जो नए सदर आए वो उस पर साइन करें। जबकि अमेरिका का इंटरेस्ट ये है और प्रेशर है कि यही उस पर दस्तखत करें ताकि आने वाला जो है वो उससे मुनहरिफ ना हो और ये कंटिन्यूएशन हो जाए और अमेरिका की फौजें वहाँ पर 10 साल तक मौजूद रहें।
जी जैदी साहब, लोया जरगा के फैसलों की यानी मौजूदा जो सेटअप है अफ़गानिस्तान का, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या उस पर अमल दरामद लाजमी है या फिर पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ज़रूरी है?
जी जो सकाफ़ती प्रेशर है या जो वहाँ की सकाफ़त है उसमें तो उस पर अमल दरामद लाजमी है, लेकिन पार्लियामेंट से, अब चूंकि पार्लियामेंट तो और जमहूरी जो निज़ाम है, जो मौजूदा कवानीन है ये तो, और कोर्ट्स जो हैं ये तो मॉडर्न दुनिया की बात है, लेकिन वहाँ की जो सकाफ़त है उसमें लोई जरगा बहुत अहमियत रखता है, और वहाँ के अगर फैसलों को, उन फैसलों को अगर ना माना जाए तो फिर वो कबायली सरदार उसके पाबंद नहीं रहते, और फिर वो जो भी करते हैं मतलब उस फिर वो आज़ाद हैं कि
जी
उस के रद्द अमल के तौर पे जो भी चाहें फिर वो करें, वो पाबंद नहीं रहते। इसलिए ये अहम है लुई जरगा का जो फैसले हैं उस पे अमल दरामद कानूनी तौर पर तो उस तरह नहीं है, लेकिन सकाफ़ती तौर पर उसका बहुत अहमियत है उस कबायली निज़ाम में, और उसमें लुई जरगा का फैसला अहम होता है।
ये काबुल वॉशिंगटन सिक्योरिटी मुआहदा, इसकी माहियत क्या है? यह अफगानिस्तान से अफवाज के निकलने का मुआहदा है, या अफवाज के निकलने के बाद अफगानिस्तान में बाकी रह जाने वाली अमरीकी अफवाज की हैसियत, अख्तियारात और फराइज तय करने का मुआहदा है?
ये बड़ा अजीबोगरीब मुआहदा है
जी
जिसमें अफगानिस्तान से फ़ौजों के निकलने और रहने दोनों का मुआहदा है।
जी
यानी 2014 में 1,20,000 जो फ़ौजी हैं वो तो निकालने का इनका इरादा है अमेरिका का और नेटो का, लेकिन वहाँ पर ये 15 से 20 हज़ार अमरीकी फ़ौजी रखना चाहते हैं, और उसकी जो माहदे की बुनियादी शिक है या जो उसकी डिज़ायर है उस तमाम माहदे के पीछे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये है कि वहाँ पर ये फ़ौजी रहकर जो अफ़गानिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल जो खदशात हैं, बैरूनी और अंदरूनी जो खतरे उनको लाहक हैं उससे ये महफूज करेंगे, वहाँ पर रहकर ट्रेनिंग देंगे और वहाँ की सिक्योरिटी पर नज़र रखेंगे। तो अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो खतरात हैं ये बड़े बहुत मायने खेज टर्म है। एक्सटर्नल खतरात में जो उस इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और उसमें अफ़गानिस्तान जहाँ पर मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहाँ से एक्सटर्नल खतरे की बात हुई ना, तो यानी ये कि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान, मतलब ये बैरूनी खतरे के इलाके या ममालिक हो सकते हैं, और अंदरूनी ख़तरा जो है वो उन्होंने खुद ही वहाँ तालिबान क्रिएट करके बिठाए हुए हैं, वो ख़तरा मौजूद रहेगा। अलकायदा भी इन्हीं की पैदावार हैं, वो वहाँ मौजूद रहेगा, ख़तरा मौजूद रहेगा तो अमरीकी फ़ौजों की मौजूदगी का जवाज़ वहाँ मौजूद रहेगा। चुनाचे रिज़ल्ट ये निकलता है सारी बात का कि वहाँ से अमेरिका निकलना नहीं चाहता, वहाँ पर वो रहकर अफ़गानिस्तान को अपनी एक कॉलोनी के तौर पे या अपनी एक रियासत के तौर पे उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसकी मईशियत को, उसकी सियासत को, ताकि वो वहाँ पर फिज़िकली बैठकर रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात हैं उन पे वो नज़र भी रखे और उसमें वो दखल अंदाजी भी करता रहे। तो ये काफ़ी अहम माहदा है अमरीकी और पेंटागन के नुक्ते नज़र से, और जो बाकी ममालिक हैं इर्द गिर्द उनको भी इस पे उनकी भी खदशात हैं, और इंडिया भी उससे को ज़्यादा यानी इंडिया भी मुतासिर हो सकता है उससे, और इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं उस रीजन में। अफ़गानिस्तान में रूस और चीन, पाकिस्तान और ईरान, इन ममालिक के भी इंटरेस्ट हैं, और उन इंटरेस्ट को रोकने, उस पे नज़र रखने, उनको अपने ज़ेरे ताबे करने के लिए अमेरिका वहाँ पर रहना चाहता है, और ये माहदा 10 साल तक के लिए वो करना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर इसका जो मकसद है वो, बाकी तो तफसीलात और हैं लेकिन
जी
बुनियादी मकसद वहाँ पर जो उन्होंने, ओबामा ने जो ख़त भी लिखा अभी
जी
کرزئی کو، اس میں بھی انہوں نے اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ وہاں کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے اور اس پہ نظر رکھیں گے اور افغانستان کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے بچائیں گے۔
یہ معاہدے کی سب سے زیادہ متنازع شق کون سی ہے جس پر افغان رہنماؤں کو اعتراض ہے؟
ایک تو جنرلی یعنی یہ جرگہ نے کہہ تو دیا کہ وہ سائن ہو جائیں اور فوجیں موجود رہیں، لیکن وہاں پر جو عوام ہیں وہ امریکہ کی موجودگی کو قبول نہیں کر رہے، اور اس میں نہ قبول کرنے کے علاوہ جو اور ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو $4 بلین آئے گا، پہلے یہ آتا تھا اور تقسیم ہو جاتا تھا، کوئی اس کی آڈٹ نہیں تھی، کوئی اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی۔ اب امریکہ یہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ $4 بلین ہمارے تھرو جائے گا، ہم دیکھیں گے، وہاں جو ہماری فوجیں ہیں وہ اس پہ نظر رکھیں گی، ہماری ٹیم اس کو مانیٹر کرے گی کہ یہ پیسہ کہاں کہاں گیا، یعنی یہ اس پیسے کو وہاں کے جو ٹرائبز ہیں ان کو آپس میں ان کے ساتھ کھیل کھیلنے کا معاملہ بھی ہے، جس کا کافی یعنی وہ ملک جو ہے وہ پہلے ہی غیر مستحکم ہے، اگر قبائل آپس میں ان کو پیسے ویسے دے کر، جو کہ ابھی بھی یہ کھیل وہاں چل رہا ہے، تو وہ کبھی اسٹیبل نہیں ہوگا وہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر، اس لیے امریکہ کی وہاں پر موجودگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کارزائی اس کو کچھ زیادہ پسند ابھی نہیں کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے ایک اور جو مطالبہ رکھا وہ یہ کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو لاسٹ ٹائم کرزئی کے الیکشن دوبارہ کرانے پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اور انہوں نے انٹرفیئر کر کے مکمل یعنی کنٹرول کیا تھا وہاں کے انتخابات پر۔ تو کرزئی صاحب کا اس وقت یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں الیکشن سے متعلق بالخصوص، اس میں امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ تو بظاہر امریکہ اس پہ ایگری کر گیا ہے، لیکن امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں ایسی حکومت قائم ہو جو اس کے زیر تابع نہ ہو۔ چنانچہ یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ افغانستان کے جو عوام ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنی قسمت کا، اپنے ملک کا، وہ غالباً اس معاہدے سے مطمئن نہیں ہیں۔
جی، افغان عوام تو ہر روز وہاں پر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، معاہدے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا ہے کہ افغان لویا جرگہ نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے اور حامد کرزئی سے کہا ہے کہ معاہدے پہ دستخط کر دیں، لیکن انہوں نے مشروط بھی کر رکھا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک تو گوانتا نامو بے سے قیدیوں کی آزادی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ کوئی بھی امریکی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر افغانستان کے اندر افغان قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔ کیا امریکہ معاہدے کا جو ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اس میں کسی امینڈمنٹ پہ تیار ہے؟ یعنی یہ جو عدالتی استثناء والی شق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
نہیں، وہ بالکل اس بات پہ دے آر ایڈمنٹ، مطلب وہ بالکل اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کو وہ بالکل اس شق کو نہیں نکالیں گے، کیونکہ پھر افغانستان کی جو فوجوں کو وہاں فری ہینڈ ہے ملا ہوا، وہ پھر اس طرح فری ہینڈ نہیں رہے گا، اور صورتحال بالکل جیسے عراق میں ہوئی پیدا، اور جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا گوئنٹانامو بھیج دیا، جس گھر میں داخل ہو گئے اور لوٹ مار کی اور قتل عام کیا، تو یہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پابند امریکی فوجی، وہ تو ویسے ہی ایک کاؤ بوائے، ان کی پوری جو فوج کا اٹھان ہے وہ تو مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، وہ ان کا فیصلہ اگر آپ نہ مانیں تو وہ گولیاں مارتے ہیں، مطلب نہ ماننے کا جواب گولی مارنا ہے۔ تو اگر افغانستان کے قانون کی وہ پابندی میں آ جائیں گے تو پھر امریکہ پابند ہو جائے گا افغانستان کے قوانین کا، جو کہ امریکہ کی فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی، اور یہ شق وہ इससे कभी भी अपना इसको इससे इस्तेसना हासिल नहीं करेंगे, ना ही वो इसकी इसको उसमें से निकालेंगे, जो कि अमरीकी आवाम के लिए भी, अमरीका की हुकूमत के लिए भी बहुत, अफ़गानिस्तान की आवाम और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत एम्बेरसमेंट होगा अगर ये उन्होंने एग्री करके इस पे साइन कर दिए तो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और शमीम फैज़ी साहब से टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबिता बरकरार किया गया है। हिंदुस्तान के सीनियर सियासतदान मुमताज़ तजिया निगार शमीम फैज़ी। फैज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब, काबुल वॉशिंगटन सिक्योरिटी मुआहदे को अफ़गान लोया जरगा ने मंजूरी दे दी है और हामिद करज़ई से कहा है कि इस पर वो दस्तखत कर दें। खुद इस मुआहदे के बारे में आपका तजिया क्या है? ये मुआहदा अफगानिस्तान के कौमी मफाद के लिए क्या हैसियत रखता है? कितना अफगान अवाम के मफाद में है और उससे अमरीकी मफादात कितने पूरे होंगे?
देखिए, मुआहदे की जो तफसीलात अब तक मिली हैं
जी
उनसे मुझे इराक से अमरीकी अफवाज की वापसी से पहले का माहौल याद आता है
जी
और ऐसा लगता है कि अमरीकी अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं।
जी
अगर मुआहदे पर लोया जरगा के फैसले के मुताबिक हामिद करज़ई दस्तखत कर देते हैं
जी
तो 15,000 के करीब अमरीकी फौजियों की मौजूदगी का जवाब पैदा हो जाएगा,
जी
कानूनी जवाब पैदा हो जाएगा,
बिल्कुल
जो एक तरह से बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान को अमेरिका की तहवील में रखने के मुतरादिफ होगा।
जी
और अगर नहीं करते हैं और जिस तरह से इस माहदे की मुख्तलिफ शकों की मुखालफत खुद काबुल में और अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में की जा रही है
जी
तो अमरीकी 2014 में अपनी फौजों की वापसी के जरिए वही माहौल पैदा करना चाहेंगे जो उन्होंने इराक में पैदा किया।
जी
मैं तो साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जरगा से ये तजवीज़ मंजूर करवा के अमेरिका ने कबाइलियों के आपसी तसादुम की राह हमवार करने की कोशिश की है
जी
और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि या तो अफगान हुकूमत हमारी कठपुतली हुकूमत बनी रहे, हमारी फौजें वहाँ तैनात रहें, इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी अब हैं और
जी
ना ही नाटो की फौजें बल्कि सिर्फ अमेरिका के 15-20 हज़ार फौजी वहाँ रहें जो अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम हुकूमत को कठपुतली हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और अगर किसी वजह से ये मुआहदा नहीं होता है तो अमरीकी जरगा के मुख्तलिफ कबायली अख्तलाफात को इस्तेमाल करके उसे इंतहाई बदतरीन खाना दंगी की आग में झोंक देंगे। तो इससे बुनियादी तौर पर अमरीका का मफाद वाबस्ता है,
जी
अफगानिस्तान के अवाम में के हाथ में कुछ भी नहीं है।
फैजी साहब, ये अदालती इस्तिस्ना का जो मसला है, वो जो अमेरिका ने जो शिक शामिल की है कि अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में रहेंगे लेकिन उन पर अफगानिस्तान का कानून लागू नहीं होगा, अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो अफगानिस्तान में उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। किसी भी मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क की जानिब से अपने कारकुनों, शहरियों या फौजियों के लिए अदालती इस्तिस्ना के मुतालिबे का आज के तौर में जवाज क्या है?
कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि हमारी जबरदस्ती को आप मानिए, हमारी मौजूदगी को, हमारे अहकाम को मानिए। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि
जी
अगर मुआहदा ना भी हो
जी
और कोई अमरीकी जुर्म करे तो अमरीका की कोशिश ये होती है कि उसके ऊपर उस मुल्क के अंदर उस मुल्क के कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हो। 3 साल पहले पाकिस्तान में एक अमरीकी जासूस ने, जिसके बारे में यकीन था कि वो CIA का एजेंट है, ट्रैफिक के खिलाफ वर्दी का काम में वो गिरफ्तार हुआ और उसके उसके बाद अमेरिका की सारी हुकूमत ने अपनी सारी ताकत झोंक दी कि उस पर पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुकदमा ना चले, और बाद में एक भारी रकम अदा करके वो उस मुजरिम को ले जाने में कामयाब हुए थे। ये बात सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में अमरीकी फौजी जो अफगानिस्तान में हैं उनकी रसाई अफगान घरों तक थी, और असल मामला वही है कि करदई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि काबुल से और अफगानिस्तान से बाकायदा हट जाने के बावजूद जो अमरीकी मौजूद रह जाएं उन पर अफगानिस्तान का कानून लागू ना हो। लेकिन अमरीका इस अदालती इस्तेस्ना के लिए यकीनन इसरार करेगा, और अगर नहीं माना गया तो वो वही कार्रवाई करता रहेगा जो उसने पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसे में एक पाकिस्तानी को हिलाक करके किया था। अमरीकी ये बर्दाश्त नहीं करते कि दुनिया के किसी और मुल्क का कानून उन पर लागू हो। लाकानूनियत की ये बुनियाद है उनकी कि वो दुनिया के किसी और कानून को कानून नहीं मानते।
बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब, लाइन पे मौजूद रहिएगा। और नाज़रीन टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर कालम नवीस और मुमताज़ तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
जनाब, काबुल वाशिंगटन सिक्योरिटी मुआहदे को लोया जरगा ने मंजूरी दे दी है, ये मुआहदा अगर इस पर करजई साहब दस्तखत कर देते हैं तो इसके असरात इलाके पर क्या मुरतब हो सकते हैं?
उनकी कीमत क्या है जिसकी मैक्सिमम फायदा उठाना भी चाहते हो और अमरीकियों की बात मुश्किल नहीं है, वो ऐसे लोगों को फायदा नहीं देते। ये तो एक बात है, लेकिन इसका अपमान कौन कौन इम्पोर्टेंट मसला है। इस वादे में कोई साथ नहीं देंगे
जी। सज्जाद मीर साहब, लाइन में कुछ गड़बड़ चल रही है, आवाज़ आपके साथ साफ नहीं आ रही है, हमारे साथ ही आपसे दोबारा राबिता करेंगे। जैदी साहब, जनाब आज के दौर में कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क से इस बात पर इसरार करे कि तुम अपने यहाँ हमारे शहरियों फौजियों और कारकुनों को अदालती इस्तेस्ना दो, अगर हमारा कोई फौजी या शहरी तुम्हारे यहाँ कोई जुर्म करे तो अव्वल तो ये कि तुम्हारी पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे, दूसरी बात यह कि तुम्हारे यहाँ का कानून उस पर लागू ना हो और उस पर मुकदमा तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगा, इसको इस्तेमार के अलावा कोई और नाम दिया जा सकता है?
जी बिल्कुल, ये तो एक खुली बदमाशी और गुंडागर्दी है, और आलमी साम्राज्य जिसका सरगना इस वक्त अमेरिका है और पूरे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका ये इंचार्ज है इस वक्त, तो वो पूरी दुनिया पूरे ग्लोब को अपने कंट्रोल करके अपने मातहत करना चाहता है कि उसके आदमी जहाँ जाएं दंदनाते हुए मारें, कत्ल करें, औरतों के साथ बदसलूकी करें, रेप करें, और उसके बाद उन पर कोई मुकदमा कायम ना हो। ये रेमंड डेविस का जो अभी हवाला दिया गया, वो पाकिस्तान में उसने रिवर्स करते हुए गाड़ी को हलाक किया था पाकिस्तानी शहरी को, और उसके बाद वो किसास और देत के हवाले से जो पाकिस्तान में कानून बाद में ज़ियाउल हक ने नाफिज किया, हालांकि ये किसास और देत के लिए उस वक्त हमने बहुत प्रेशर डाला था जब भुट्टो साहब का मुकदमा चल रहा था कि ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, लेकिन उस वक्त शरीयत का ये ज़ियाउल हक को सूट नहीं करता था, तो उसने भुट्टो साहब को फांसी देनी थी इसलिए ये उसमें उसने शामिल नहीं किया शरीयत के, बाद में नाफिज शामिल किया गया, और इसी के हवाले से पैसे देकर वो जो कातिल है रेमंड डेविस वो अमेरिका पाकिस्तान से उसको अपने मुल्क में ले गया। इसी तरह बाकी जहाँ कहीं भी ये गए हैं, इन्होंने वहाँ पर जो भी काउंटर रेवोल्यूशनरीज हरकतें की हैं, कत्लो गारत की है, लैटिन अमेरिका के बेशुमार ممالک میں انہوں نے یہ کام کیا. ویتنام کی تاریخ آج تک خون سے بھری ہوئی ہے ان کے مظالم سے. ریسنٹلی عراق میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کے زور پر, اور پھر چونکہ پیسہ ہے ان کے پاس, فوج ہے, نیٹو ان کے ماتحت ہے, یونائٹڈ نیشن ان کا سب سرویئنٹ ہے, سیکیورٹی کونسل سے یہ چاہیں تو 1973 کا ریزولوشن پاس کروا کے لیبیا پہ جا کے چڑھ دوڑتے ہیں, وہاں کی سویلینز کو بچانے کے بہانے ہزاروں سویلینز کو مار دیتے ہیں. وہ تو تھینک گاڈ کہ دس ٹائم یہ دے کوڈنٹ گیٹ اوے, مطلب انہوں یہ روس اور چین اور ایران کے پریشر اور برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے سیریا کے خلاف یہ وہ کام نہیں کر سکے جو کہ لیبیا پہ انہوں نے کیا تھا. دو تین دن میں یہ تیار تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ تو ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ دریا پر وہ جو بھیڑیا ہے, اور بھیڑ کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ بھیڑ اس وہ پانی اوپر سے جا رہا ہے تو اس نے چونکہ بھیڑ کو کھانا ہے اس لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے کہ پانی اوپر سے جا رہا ہے. بھیڑ نے کہا میں تو پانی نیچے آ رہا ہے اس کو پی رہی ہوں. اس نے کہا نہیں, چاہے نیچے آ رہا ہے یا اوپر سے آ رہا ہے, پانی تو تم پی رہی ہو, اس لیے میں نے تمہیں کھانا ہے. تو یہ بالکل ایک بدماشی ہے, اور وہ پورے دنیا پہ انہوں یہ امریکی سامراج اپنے جو پنجے گاڑے ہوئے ہے وہ چند ممالک کو چھوڑ کر, جنہوں نے اپنی عزت نفس اور اپنے سر اٹھا کر جینے کا عزم کیا ہوا ہے, جس میں ایران, کوریا, شاویز کا, وینزویلا, یہ چند ممالک ہیں جن کو, اور کیوبا, اس کو چھوڑ کے باقی تمام دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور انفارچونیٹلی جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں. مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور قطر جیسے ملک ان کے دم چھلنا ہیں, اور ریئیکشن آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی بات چلی ہے تو کتنا شدید ریئیکشن سعودی عرب نے, اسرائیل کے ریئیکشن سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہوئی ہے. تو یہ آپس کے انتشار, وہاں کے جو غدار لوگ ہیں ملکوں میں, اور وہاں جو ملکی مفادات کے خلاف لوگ حکومت میں آتے ہیں, ان کے تھرو یہ حکمرانی دنیا پہ کر رہے ہیں. اور یہی حال افغانستان میں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ دندناتے پھریں, جس گھر میں چاہیں داخل ہو جائیں. اب اس وہاں کا جو کلچر ہے وہ بہت پرانا, اس میں یعنی وہ اپنے گھروں میں ان کا سسٹم, عورتیں اندر ہوتی ہیں, مرد باہر بیٹھتے ہیں, جس کو وہ حجرہ کہتے ہیں, حجرے میں عورتیں نہیں ہوتی, اور ان کے ہاں ایک اور طرح کا نظام ہے جس میں گھر کا ایک تقدس ہے. یہ جاتے ہیں, پامال کرتے ہیں, مرتے ہیں. تو یہ افغانستان کے عوام کے لیے تو کبھی قابل قبول نہیں ہوگا, اور اگر یہ سمجھوتا ہوا تو عوام وہاں کے پہلے ہی امریکہ کے خلاف ہیں, وہ اس میں شدت آئے گی. اور ان کو کوئی حق نہیں کہ سامراج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ ہے, آپ ورلڈ آرڈر آپ نافذ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو انسان ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, غریب ہیں یا امیر ہیں, ان کو جب چاہیں مار دیں, جب چاہیں ان کی عورتوں کو اٹھا لیں, ان کو ریپ کریں. تو یہ تو ایک آج کے ماڈرن دنیا میں ایک ایسا جنگل کا قانون لیے پھر رہا ہے امریکہ, اور اس قانون کے ذریعے وہ دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو لوگ تو ریئیکٹ کریں گے اور کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ شکریہ فیضی صاحب, آپ لائن پر ہیں جناب. جناب یہ معاہدے پر دستخط کے لیے امریکہ کی طرف سے جو دباؤ پڑ رہا ہے اس میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ فوجی امداد فوری طور پر بند کر دی جائے گی. دوسری بات کو بعض تجزیہ نگاروں نے زیادہ اہمیت دی ہے کہ امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج فوری طور پر نکال لی جائیں گی. اگر امریکہ سمیت تمام غیر ملکی فوجیں فوری طور پر نکال لی جائیں تو بعض افغان رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت ہے.
جی, جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے
جی,
وہ واضح نہیں کر رہے ہیں. امریکی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی خطرات ہیں
جی,
लेकिन मैं समझता हूँ कि अमरीकी ये दबाव डाल रहे हैं कि अगर तुमने ये मुआहिदा कबूल नहीं किया तो हम तुमको बदतरीन खाना जंगी का शिकार बना देंगे
जी।
और बिल्कुल वही हालात पैदा करेंगे जो इराक में पैदा किए हमने। इराक में भी सोचे समझे तरीके से अमरीकी फौजों की वापसी के बाद वो हालात पैदा किए गए जिसमें आज वो मुल्क बदतरीन बरादर कशी के माहौल में है। अफगानिस्तान में भी वो वही माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ सियासी लिहाज से मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। इसकी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो इराक से भी ज़्यादा मानी खैस है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में जिनको अपने लिए ख़तरा समझता है, रूस, चीन, ईरान, मैं पाकिस्तान को इसमें नहीं गिनता हूँ, ये तीनों मुल्क की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं और इसलिए अमेरिका हर हाल में चाहेगा कि ये इलाका गैर मुस्तहकम रहे। इस इलाके पर अगर कोई हुकूमत कायम भी हो तो वो उसकी कठपुतली हुकूमत हो, ताकि वो इस मुल्क को अपने तीन मुबैना दुश्मनों के खिलाफ निगरानी के लिए, टकराव के लिए और उनके तरक्की को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब। इसी के साथ हम अली जाफर जैदी साहब के भी शुक्रगुजार हैं और सज्जाद मीर साहब से हम इसी के साथ माजरत खां हैं कि टेलीफोन लाइन में गड़बड़ की वजह से उनसे दोबारा राबता बरकरार नहीं हो सका है। बहरहाल अफगानिस्तान और अमेरिका के सिक्योरिटी मुआहदे के हवाले से खुद अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। आवाम तो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अफगानिस्तान के किसी न किसी शहर में इस मुआहदे के ख़िलाफ़ मुजाहरा ना होता हो। बगर बाज अफगान रहनुमाओं ने दबाव डाल रखा है अमरीकी अफगान सदर हामिद करज़ई पर कि 2014 से पहले इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिया जाए, जबकि हामिद करज़ई साहब जो ख़ुद इस मुआहदे की वकालत करते रहे हैं, जब जुमेरात को लोया जरगा का इजलास शुरू हुआ है तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए ये मुआहदा ज़रूरी है। और इसी के साथ उन्होंने लोया जरगा के अराकीन से ये अपील भी की थी कि मुआहदे को मंजूरी दी जाए, लेकिन चार दिन की बहस व मुबाहसे के बाद जब मुआहदे को मंजूरी दे दी गई है तो अब हामिद करज़ई साहब ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए कुछ शरायत भी पेश की हैं और इसी के साथ फौरी तौर पर वो इस मुआहदे पर दस्तखत से इनकार कर रहे हैं और अमरीका के सारे दबाव को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुआहदे पर 2014 के सदारती इलेक्शन के बाद ही दस्तखत होंगे। हामिद करज़ई साहब जो ख़ुद इस मुआहदे के हक़ में थे, अब इस मुआहदे पर दस्तखत से क्यों इनकार कर रहे हैं? और इसी के साथ वो अफ़गान रहनुमा जो हामिद करज़ई पर तनकीद कर रहे हैं मुआहदे पर फौरी तौर पर दस्तखत से इनकार के बायस, उनके पेश नज़र क्या मफादात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं? इस पर हम इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। तो कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।